Grace Assemblies of Pakistan, a growing network of churches and fellowships. Grace Assemblies of Pakistan, रूह से मामूर और तेजी से तरक्की करती हुई कलीसियाएं हैं, जिनका मकसद हुक्म आजम की तकमील, ईमानदारों की रूहानी नशोनुमा, बदनी शिफा और आलमगीर कलीसिया को बिल अमूम और कलीसियाए पाकिस्तान को बिल खुसूस खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए तैयार करना है। इस रोया की तकमील के लिए कई जराए बुरुएकार लाए जा रहे हैं, जिनमें नई कलीसियाओं और बाइबल कॉलेजेस का कायम, खतो किताबत के कोर्सेज, सेमिनार्स और कलीसियाई मिशंस का इनेकाद और टेलीविजन और इंटरनेट के मीडिया, बिलखुसूस ऑडियो वीडियो पैगामात की रिकॉर्डिंग और नशरो इशाअत का सिलसिला शामिल है। इस वक्त आप जो रूह परवर पैगाम सुनने को हैं, वो ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान के बानियों सीनियर पास्टर रेवरेंट डॉक्टर नईम प्रसाद आप तक पहुंचाएंगे। ये पैगाम आपकी जिंदगी, रवैये और हालात को यकसर तब्दील कर देगा। इस पैगाम को सुनने के बाद आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, आपके शख्सी, खानदानी और कलीसियाई रवैये बदल जाएंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।
खुदावंद के कलाम में से यकूब का था, और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, कुछ साल के आगाज में कुछ मैसेज आए जो जेम्स के लेटर में से थे। सो आप सबको ग्रेस फैमिली ऑफ पाकिस्तान की तरफ से नया साल है, और ये साल आपके लिए और ज्यादा फ्रूटफुल साल। आमीन। सो जेम्स के आप जानते हैं 5 चैप्टर्स हैं, और हम बीच बीच में से चांद एक मैसेज देखेंगे। वी विल नॉट स्टडी इट लाइक अ बाइबल स्टडी, लेकिन डिफरेंट सर्मन हम देखेंगे। तो आज हम पहले चैप्टर में से, आज नए साल के दिन हम पहले चैप्टर में से चांद एक वर्सेस को लेंगे, 2 आयत हम पढ़ेंगे, और वहां से हम खुदा के कलाम को देखेंगे। लेकिन इस पूरी जो ये सीरीज है, इसका जो नाम है, दैट इज चेंज मी ओ लॉर्ड। पूरी सीरीज ऐसे टाइटल का है, आए खुदावंद मुझे बदल, चेंज मी ओ लॉर्ड, आए खुदावंद मुझे बदल दे, आए खुदावंद मुझे बदल। और इस जिम्मन में आकर जो हम पहला पैगाम देखेंगे, उसका जो टाइटल है, जो आज नए साल के लिए भी हमारे लिए फायदेमंद भी होगा, वो है लिसन मोर Talk less, calm down. हाँ जी, यकूब का खत पहला बाब उसकी 19वीं और 20वीं आए। Listen more, सुनने में तेज हो, talk less, बातें जो है बातें करने में, बोलने में धीरा, and calm down, यानी You shouldn't be an angry person, गुस्से में आने वाला शख्स। और खास तौर पर आज हम जिस एक एरिया को फोकस करेंगे, that is the focus of anger. आज की जो जनरेशन है, हमारी जो कुछ करेक्टरिस्टिक्स है वही है, वी आर अ फास्ट जनरेशन, हम चाहते हैं सब चीजें बहुत जल्द हो जाए, और एटीएम मशीन की तरह हर चीज काम करे। And secondly, we are an angry generation. हम हर एक से नाराज भी रहते हैं, गुस्से में भी आ जाते हैं, और एकदम से अगर कोई हमारी मर्जी की या तबीयत की बात ना हो तो हमारा जो टेम्परामेंट है वो हाई डिग्री पे चला जाता है। लेकिन खुदा यीशु मसीह का छोटा भाई जो यकूब है, हमें ये बताता है, लिसन मोर टॉक लेस काम डाउन। धीमा मिजाज जो है हमारी जिंदगी में, स्वयं पढ़े 19वीं और 20वीं।
जाने पलस में यूं मरकूम है, ऐ मेरे प्यारे भाइयों, ये बात तुम जानते हो, बस हर आदमी सुनने में तेज और बोलने में धीरा और कहने में धीमा हो, क्योंकि इंसान का कहर खुदा की राजबाजी का काम नहीं करता।
हमें खुदा के कलाम को पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस बच्चे हो। आए मेरे प्यारे भाइयों, ये बात तो हम जानते हो। सो जेम्स इज टेलिंग देम, यू ऑलरेडी नो दिस। ये बात जो मैं तुम्हें बता रहा हूं तुम पहले से ही जानते हो, और यही बात मैं आपको कहना चाहता हूं, आप पहले से इस बात को जानते हैं, आपने पढ़ा भी है, आप इस कलाम से वाकिफ भी हैं। लेकिन आज नए साल के आगाज में जो चंद एक फैसले हमने अपनी जिंदगी में करने हैं, उनमें से एक बुनियादी फैसला ये है, अमल करने वाले। आई एम 22 की आयत पढ़ें।
लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना महज सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं।
तो जेम्स अपनी उसी बात को एक बार फिर से रीएम्फसाइज करते हैं, लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना महज सुनने वाले जो अपने आप को। सो आज के ये जो मैसेज का मेरा जो फोकस है वो ये है कि आज हमारी तबीयत में से गुस्सा जाता है।
आमीन।
आज नए साल के बाद हम कोई ऐसा रेजोल्यूशन करें, कोई ऐसा ऐसी तब्दीली लाए अपनी जिंदगी में, कलाम हमारी जिंदगी में ऐसी तब्दीली लाए कि जो गुस्से का जो एलिमेंट है ये हमारी जिंदगी में से जाता रहे। और जब मैं इस सर्मन को स्टडी कर रहा था, जो बात मेरे सामने आई हुई है कि मैन्स नंबर वन प्रॉब्लम इज एंगर, और हमारी जिंदगी में जो बहुत से गुनाह हैं उनकी वजह वो लीडर एंगर है या वो गुस्सा है जो जिसकी जड़ें हमारे अंदर जो है मौजूद है। इसी एंगर की वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स, बहुत सी बीमारियां, फिजिकल प्रॉब्लम्स और रिलेशनल प्रॉब्लम जो है हमारी जिंदगी में बिल्डअप होती है। सो कई दफा हम ये कहते हैं कि हमारे मेरे पैगाम का ये मकसद है कि ये चेंज हमारी जिंदगी में आए, लेकिन मैं इसको बाउंड नहीं करना चाहता। हो सकता है मेरा एक फोकस है, लेकिन रूल कुदस एक ही पैगाम से हमारी जिंदगियों में कई काम कर सकता है, हमें कई एरियाज में चेंज कर सकता है। लेकिन जो मेन एलिमेंट आज हम देखेंगे, जिस बात पर हम फोकस करेंगे कि इफ वी आर ऑनेस्ट, अगर हम ध्यानदारी से काम लें तो हर बंदा ये एडमिट करेगा कि हमारे अंदर किसी न किसी लेवल पे गुस्सा जो है वो मौजूद है, और एवरी नाउ एंड देन वो डिफरेंट फॉर्म्स में वो एक वॉल्केनो की तरह, आतिशबाजी पहाड़ की तरह वो बाहर आ जाता है। और जेम्स पहले चैप्टर में, जेम्स जो है दिस इज द फर्स्ट बुक ऑफ द न्यू टेस्टामेंट, और वो इन जो करेक्टर की बातें हैं, मसीह किरदार की बातें हैं, उन पे बहुत फोकस करता है। और 19वीं आयत के बाद जब 20वीं आयत आती है तो वहां पर लिखा है क्योंकि इंसान का कहर खुदा की रासबाजी का काम नहीं करता। हम इसके मीनिंग पे देखते हैं क्या मतलब है इसका। सो ज्यूइश तनाजुर में ये जेम्स का जो लेटर है लिखा गया, और ज्यूइश जो कॉन्वर्ट्स थे, जो जो मसीहत में आए, दे वर ज्यूइश बिलीवर्स जो ईमान में आए, और उनको जेम्स जो है ये बताते हैं कि आए मेरे प्यारे भाइयों, ये बात तुम जानते हो, ऑलरेडी तुम ये बात जानते हो, बस हर आदमी सुनने में तेज और बोलने में तीरा और कहर करने में। और वो किन बातों कह रहे हैं कि तुम पहले से जानते हो, जो उन्होंने बातें पहले कही, पहली आयत से लेकर 18वीं आयत तक जो बातें कही हैं जेम्स से, जेम्स इज सेइंग कि तुम पहले भी इन बातों को जानते हो, गुनाह के ताल्लुक से, आजमाइश के ताल्लुक से और चीजों के ताल्लुक से। लेकिन इन सारी चीजों का हल क्या है, इन सारे एरियाज को हमने ओवरकम कैसे करना है, तो तीन हुक्म वो हमारे सामने रखते हैं, थ्री शॉर्टर कमांड जो है वो हमारे सामने सिंपली रखते हैं, इन चीजों को फॉलो कर टू लिव अ फ्रूटफुल क्रिश्चियन लाइफ और एक कामयाब मसीह जिंदगी गुजारने के लिए तीन शॉर्टर कमांड जो है वो हमारे सामने रखते हैं। वो क्या है, सुनने में तेज, बोलने में धीरा, कहर करने में धीमा। और जैसे मैंने पहले कहा कि जिस एरिया पे आज हमें अपनी जिंदगी में काम करने की जरूरत है, ये जो बेजा गुस्से का जो एलिमेंट है हर चीज पे, सम पीपल आर ऑलवेज एंग्री, वो जब सुबह उठते हैं तब भी उन्हें गुस्सा ही होता है, जब वो नाश्ता करते हैं तब भी गुस्से में, जब वो जॉब में जाते हैं दे आर स्टिल एंग्री, व्हेयरएवर दे आर व्हाटएवर दे आर डूइंग दे आर एंग्री। तो इस एंग्री बर्ड की हालत में से निकल कर हमें एक मसीही और ईमानदार की हालत में आना है। जस्ट एक बुनियादी बात जो मैं बताया लगे याद रखें, मैन ऑफ गॉड, हु इज अ मैन ऑफ गॉड, हु इज अ मर्द खुदा कौन है, उसकी पहचान क्या है। अ मैन ऑफ गॉड लव्स द वर्ड ऑफ गॉड, अ मैन ऑफ गॉड लव्स द वर्ड ऑफ गॉड, मर्द खुदा खुदा के कलाम से प्यार। ये क्राइटेरिया है टू नो समबडी इज अ मैन ऑफ गॉड, दैट यू लव द वर्ड ऑफ गॉड, यू ओबे द वर्ड ऑफ गॉड, यू फॉलो द वर्ड ऑफ गॉड एंड यू लिव द वर्ड ऑफ गॉड। तो अगर हमने अपने आप को पहचानना है, देखना है, किसी और को देखना है, ये मर्द खुदा है, खुदा की बंदी है, हाउ दे वॉक विद गॉड, सो व्हाट्स द प्रिंसिपल, अ मैन ऑफ गॉड लव्स द वर्ड। जब कलाम होगा जो मर्द खुदा है उसका जो एम्फसिस होगा कलाम को सुनना, और जो उसका बाइबल रीडिंग का टाइम है उसका एम्फसिस क्या होगा, बाइबल को पढ़ना। अ मैन ऑफ गॉड लव्स द वर्ड, अदरवाइज ही इज नॉट द मैन ऑफ गॉड। तो ये बात आपने याद रखनी है कि इफ यू आर पीपल ऑफ गॉड यू मस्ट लव द वर्ड, कलाम को सुनना, कलाम को पढ़ना, कलाम को याद करना, कलाम पे अमल करना, यू लव, दिस शोज यू आर अ मैन ऑफ गॉड। ये बात आपको याद रहेगी, यही आज का बुनियादी पैगाम है नए साल का, कि खुदा के जो लोग हैं वो खुदा के कलाम से मोहब्बत करते हैं, उसको सुनना, उसकी तशरीह सुनना, उसकी तफसीर को सुनना, उसको पढ़ना, उसको याद रखना, उस पर अमल करना, उसको उस पर मेडिटेट करना, दे लव। इफ यू लव द वर्ड ऑफ गॉड दिस मीन्स यू आर ऑन द राइट ट्रैक, आप एक दुरुस्त राह पर गामजन है। सो इस पैगाम के इंट्रोडक्शन में हम जो एक बात देखेंगे वो ये है, टुडे वी लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन, बहुत सी इंफॉर्मेशन, तो हमारे ये बहुत कुछ हो रहा है, बहुत सी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, दी जा रही है, लेकिन व्हाट वी आर लर्निंग अबाउट द वर्ड ऑफ गॉड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर हम आज की तरक्की पर गौर करें और आज का जो हमारा इंफॉर्मेशन लेवल है उस पर गौर करें, तो एक अंदाजे के मुताबिक हर रोज तकरीबन 100 बिलियन ईमेल्स की जाती है। टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन इतनी फास्ट है कि एक दिन में तकरीबन 100 बिलियन ईमेल्स की जाती हैं, जो दुनिया की आबादी से 10 गुना ज्यादा। हर रोज पूरी दुनिया में तकरीबन 5,000 किताबें प्रिंट होती, 5,000 बुक्स अप्रोक्सीमेटली आर बीइंग प्रिंटेड ईच डे। हर रोज 5,000 किताबें जो है वो नई जो है वो प्रिंट होती है। जो टेक्स्ट मैसेज आप करते हैं दुनिया में एक अंदाजे के मुताबिक 6 ट्रिलियन टेक्स्ट मैसेज जो है वो रोजाना की जा रही है, हम एक दूसरे तक कुछ ना कुछ पहुंचा रहे हैं। खुदा यीशु मसीह के टाइम से लेकर तकरीबन 1500 साल लगे कि दुनिया में जो नॉलेज है वो डबल हो जाए, और उसके बाद से यानी 1500 सालों के बाद से तकरीबन 2500 सालों के बाद जो दुनिया की नॉलेज है वो डबल हो जाती, फिर उसके बाद यानी 250 सालों के बाद दुनिया की जो नॉलेज है वो 150 साल में वो डबल हो रही। दूसरी जंग अजीम के बाद जो दुनिया की नॉलेज थी वो 25 सालों में डबल हो रही, और इस वक्त जो दौर है उसमें हर 12 महीने के बाद दुनिया की जो नॉलेज है वो डबल हो जाती, यानी इतनी तेजी के साथ इंफॉर्मेशन नॉलेज जो है वो लोगों पर और आप तक पहुंचाई जा रही है एंड नो वंडर वी कैन नॉट कीप इट अप। इतनी नॉलेज हम उसे रिटेन नहीं कर सकते, उसे हासिल नहीं कर सकते, हमारी जरूरत भी नहीं है कि हम इस कदर नॉलेज जो है, इंफॉर्मेशन जो है, हम उसके पीछे पड़। लेकिन व्हाट इज हैपनिंग, द वर्ल्ड इज गोइंग वेरी 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 फास्ट। तकरीबन एट अ टाइम जब आप जिंदगी गुजारते हैं, पांच छह चीजें आपको डिफरेंट इंफॉर्मेशन दे रही होती है, डिफरेंट एप्स हैं आपके लैपटॉप में, आपके टैब्स में, आपके फोन्स में, आपके स्मार्टफोन्स में और चीजों में, कि एक ही साइमल्टेनियसली एक ही वक्त में पांच छह सोर्सेज जो है वो आपको इंफॉर्मेशन दे। अभी ये हो गया, अभी ये हो गया, फलां चीज हो गई है, दुबई में होटल को आग लग गई, ऑस्ट्रेलिया में नया साल ऐसे मनाया जा रहा है, रशिया में नया साल शुरू हो गया, अब फलां चीज ये हो रही है, और आपका माइंड जो है बेशुमार इंफॉर्मेशन गैदर कर, और ये बुनियादी तौर पर ये सारी जो इंफॉर्मेशन है, इनमें से जो बहुत सी इंफॉर्मेशन है आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है कि आप खुदा के कलाम को पढ़ें। और आज के दौर में डिस्ट्रैक्ट होना जो है इट्स वेरी इजी, खुदा के कलाम से, उसको टाइम देने से, उसको तवज्जो देने से हम बड़ी इजीली जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो सकते। एक राइटर है, उसका नाम है स्टीफन डैनी, उसने कहा कि अगर आप न्यूयॉर्क टाइम्स एक अखबार है, एक हफ्ता अगर आप वो अखबार पढ़ लें तो आपको इतनी इंफॉर्मेशन उस एक हफ्ते में मिलेगी कि 18वीं सदी में जो बंदा रहता था वो पूरी जिंदगी में उसको वो इंफॉर्मेशन नहीं मिलती थी, जो एक हफ्ते में अगर आप न्यूयॉर्क टाइम्स का जो अखबार है आप पढ़ लें तो वो इंफॉर्मेशन आपको मिलती। सो बेसिकली वी आर लिविंग इन अ डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड। पहले जब आप गाड़ी में या जहाज में या डेबू में सफर करते थे तो आप एक दूसरे से बातचीत कर सकते, अगर आप लोगों को सफर करते हुए देखें वो किसी से उनको बात करने की जरूरत नहीं, उनके हाथ में उनके स्मार्टफोन्स हैं, कोई गेम्स खेल रहे हैं, कोई उस पर बातचीत कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, कोई मैसेज कर रहा है, कोई और चीज कर रहा है, लोग आज अपने आप में ही वो मसरूफ है और हमारे पास दूसरों के साथ बातचीत करने के लिए टाइम नहीं। फेसबुक पे पीछे बड़ी तस्वीर चल रही थी पिछले साल में और वहां पे लिखा था कि ग्रैंड चिल्ड्रन अपनी दादी को मिलने के लिए गए और पांच छह सात आठ वहां पे ग्रैंड चिल्ड्रन की तस्वीर थी कि वो अपनी दादी से मिलने के लिए गए हैं और वो सब क्या कर रहे हैं, दादी बेचारी कुर्सी पे बैठी है, वो अपने फोनों के साथ खा रही है। तो ये उनकी मुलाकात है जो उनकी दादी के साथ। सो व्हाट इज हैपनिंग, वी आर इजिली डिस्ट्रैक्टेड, वी लुक विदाउट सीइंग, यानी हम देखते हैं लेकिन नोट नहीं करते, तवज्जो नहीं देते हैं कि क्या हुआ है और हम क्या देख रहे हैं। वी लिसन विदाउट हियरिंग, हम सुनते हैं लेकिन तवज्जो नहीं देते हैं, गौर नहीं करते हैं। वी स्पीक विदाउट अंडरस्टैंडिंग, वी आर अट्यून्ड इन एन हाइपर कैफीनेटेड जनरेशन, इतनी जो कैफीन हम पीते हैं उसने इस जनरेशन को क्या कर दिया हुआ है, हाइपर कर। बॉब मोर एक राइटर है, उन्होंने एक ऐसे लिखा द पैराडॉक्स ऑफ आवर टाइम, यानी जिस दौर में हम रहते हैं उसका पैराडॉक्स जो है वो ये, उसका एक तरह से समझा अलमिया जो है वो ये, वी हैव लर्न हाउ टू मेक अ लिविंग बट वी हैव नॉट लर्न हाउ टू लिव अ लाइफ। हमने जिंदगी में कमाना तो सीख लिया है, हमने जिंदगी गुजारना नहीं सीखा। वी हैव एडेड ईयर्स टू लाइफ बट नॉट लाइफ टू ईयर्स, हमने जिंदगी में साल तो ऐड कर दिए हैं लेकिन अपने सालों में जिंदगी ऐड नहीं की। वी हैव बीन ऑन द वे टू मून एंड बैक बट हैव ट्रबल क्रॉसिंग द स्ट्रीट टू मीट अ न्यू नेबर और टू हेल्प अ स्ट्रेंजर। हम बड़े हमने दुनिया लोगों ने बड़े लंबे लंबे सफर कर दिए हैं, वो चांद पर जाकर वापस भी आ गए हैं, लेकिन जो उसके इर्द गिर्द के लोग हैं, हम साए हैं या किसी स्ट्रेंजर को मदद की जरूरत है, हम उन तक जाना जो है वो नहीं चाहते। वी हैव डन लार्जर थिंग्स बट नॉट बेटर थिंग्स, वी हैव कॉन्कर्ड द आउटर स्पेस but we have not conquered the inner man. हमने बाहर की दुनिया फतह कर दी है लेकिन अपना जो अंदर का इंसान है वो हमने फतह नहीं किया. Everything we build is bigger, stronger, faster and larger. हम बड़ी बड़ी चीजें बना रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े बड़े प्लाजे, बड़ी बड़ी एंटरप्राइजेस, हम बड़े तेजी से काम करने वाली चीजें बना रहे हैं, बट फ्रॉम इनसाइड वी आर स्टिल स्मॉल एंड वीक. लेकिन अंदर से इंसान आज भी कमजोर है और छोटा, यानी छोटापन उसकी जात में आज भी मौजूद है. और वो इस सारी बात को बड़ी खूबसूरती से बयान करते हैं, वी हैव कम अ लॉन्ग वे इन अ शॉर्ट टाइम. थोड़े अरसे में हमने एक बड़ा लंबा जो सफर है वो तय कर दिया और बहुत सी चीजों को हमने पता कर दिया और बड़ी बड़ी चीजें हमने बना ली है. लेकिन हमने आज भी अपने दिल को हमने पता नहीं, वी हैव नॉट लर्न टू कॉन्कर आवर हार्ट्स. हमारा दिल आज भी वैसे, वही गुस्सा, वही गुनाह, वही कमजोरियां, वही फीलिंग्स, वही लड़ाई झगड़े जो शायद बागी अदम के दौर में थे, वो अब वैसे ही चीजें इंसान की जिंदगी में आज भी मौजूद. और एक चैलेंज जो आज के इंसान के सामने है वो बाहर की बैटल्स नहीं जो उसने फाइट करनी है, वो उसके अंदर की बैटल्स हैं जो उसने फाइट करनी है. वो उसका दिल है जिसको उसने दुरुस्त करना है और खुदा की ताबे करना है. जो कुछ आपके बाहर हो रहा है इट डजंट मैटर्स मच, जो आपके अंदर हो रहा है उस उसकी जो वैल्यू है या कीमत है वो ज्यादा है. और यकूब का जो फर्क है स्पेशली इस एरिया में हमें चैलेंज करता है कि हम अपने अंदर के इंसान को बेहतरीन बनाए, रूहानी बनाए, मसीही बनाए. और ये जो लेटर लिखा गया ये उन इब्तदाई मसीहों के लिए था जो बड़ी बामुश्किल अपने ईमान पे हैंग कर रहे थे, एक बड़ी मुश्किल जिंदगी जो है ईमान के ताल्लुक से गुजार रहे थे. और जब हम जेम्स का ये लेटर पढ़ते हैं तो ये बेसिकली पहली सदी के मसीहों से मुखातिब है, लेकिन स्टिल आज 21वीं सदी में भी ये जो कलाम है, ये जो किताब है हमसे मुखातिब है और हमें ये बता रही है हम अपने अंदर के इश्यूज को कैसे सेटल करें, हम लाइफ के प्रेशर्स को कैसे हैंडल करें. और तीन बुनियादी बातें जिन पर आज हम फोकस करेंगे जो जेम्स अर्ली चर्च को बताता है, दैट इज लिसन मोर, टॉक लेस, काम डाउन. सुनने में तेज, बोलने में धीरा और कह करने में धीमा. लिसन मोर, टॉक लेस, काम डाउन. सो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाई, व्हाट इज सेइंग व्हेन ही सेइंग के सुनने में तेज. सुनने में ये किस चीज की बात हो रही है यहां पे? क्या सुनने की बात हो रही है जी? खुदा का कलाम सुनने की बात, सुनने में तेज. और जब ये यकूब ये लिख रहा है तो आप अंदाजा कर सकते हैं एट दैट टाइम देयर वाज नो लेटर ऑफ रोमन्स, नो बुक ऑफ एक्ट्स. अभी अमाल की किताब नहीं थी, इब्रानियों का नहीं था, रोमियों का नहीं था, मुकाशवी किताब नहीं थी, न्यू टेस्टमेंट की चार गॉस्पल्स नहीं थी, कुछ भी नहीं था. चर्च जो कुछ भी सुन सकता था खुदा के कलाम के ताल्लुक से वो चर्च मीटिंग में सुन सकता था. तो उस तनाजुर में जेम्स कहते हैं कि हर शब्द जो है वो सुनने में तेज. और यहां पे जो यूनानी लफ्ज इस्तेमाल हुआ सुनने में तेज, तेज के लिए जो यूनानी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है इसका मतलब है जैसे एक शख्स दौड़ता हुआ किसी चीज के पीछे जा, रनिंग आफ्टर समथिंग, एज अ मैन इज रनिंग आउट रनिंग आफ्टर समथिंग, किसी चीज को सुनने के लिए, देखने के लिए, पाने के लिए आप दौड़ते हुए किसी चीज के पीछे जा रहे हैं। ये वो यूनानी वर्ड है तेज का, जो जेम्स ने यहां पर इस्तेमाल किया है, सुनने में तेज। और ओल्ड टेस्टामेंट में दाऊद नबी इसी तनाजुर में ये कहते हैं, मैं खुश होया जब मैं आकर लगे कि आओ यहोवा दे। सो ही वाज टेलिंग टू द चर्च पीपल के कलाम सुनने के लिए तुमने जल्द जमा होना है। जब कलाम की बात है, कलाम को सुनना है, तो कैसे जाना है? दौड़ते हुए जाना। आप अपने घर से जब चर्च की तरफ आ रहे हैं तो आप दौड़ते हुए आए, और रास्ते में को आपसे पूछे, हाँ जी इतनी जल्दी का दिए तुम अग भी जान चले हो? नहीं, ऐसी कलाम सुनने जा रहे। आपने ऐसी कोशिश नहीं की दौड़ते हुए नहीं आना, आधा आपने आराम से, लेकिन इतने आराम से नहीं आना है या बहुत ही आराम से आए, यानी आप में वो ईगरनेस बेसिकली होनी चाहिए कि कलाम सुनने के लिए ईगर हो, तालिब हो, ख्वाहिशमंद हो। और आज के दौर में जैसे मैंने पहले कहा, हमारे पास हर किस्म की एप्स हैं, वो मौसम का हाल बता रहा है, वो आपको ब्लड प्रेशर बता रहा है, वो खबरें बता रहा है, वो ब्रेकिंग न्यूज बता रहा है। वी हैव ऑल काइंड ऑफ एप्स इन आवर फोन्स। आपके फोन में बाइबल मौजूद है, आपके फोन में और बहुत कुछ मौजूद है, आप फोन में या लैपटॉप में या कंप्यूटर्स में आप बहुत कुछ जो है बाइबल के बारे में भी जान सकते हैं, सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन जिस कदर टेक्नोलॉजी ज्यादा हो गई है, उसी कदर हम बाइबल से दूर होते जा रहे हैं। कई दफा हमें सोचना पड़ेगा, पहली सदी के लोग अच्छे थे जिनके पास ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन वो खुदा के कलाम पढ़ने के लिए उनके पास टाइम था। ये आज के दौर में हम लोग अच्छे हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, अवेलेबिलिटी है, हर तरह के एप्स हैं, प्रोग्राम हैं, लेकिन हम उनसे फायदा नहीं उठा रहे। टेक्नोलॉजी इज बिकमिंग डेंजरस, क्योंकि वो खुदा से हमें दूर, हमने उसका दुरुस्त इस्तेमाल करना है और अपने आप को अवेलेबल करना है कि हम खुदा के कलाम को सुन। वाई सुनना क्यों जरूरी है, सुनने में तेज क्यों होना, और इसकी बहुत सी वजूहात है जो जेम्स के लेटर में ही बताई गई हैं और जगहों पर भी मौजूद है, और उनमें से चंद एक बातें जो है जानते हुए है, खुदा के कलाम में जिंदगी है। देयर इज लाइफ इन द वर्ड, खुदा के कलाम में जिंदगी। जो कलाम मैंने तुमसे किया वो रूह भी है और जमीन भी है। खुदा के कलाम में शिफा है, वो अपना कलाम नाजिल फरमाकर शिफा है। खुदा के कलाम में कुदरत है। और इन चीजों के साथ साथ एक और एरिया जिसमें हम देखेंगे, देयर इज विजडम इन द वर्ड। वर्ड ऑफ गॉड गिव्स अस विजडम, विजडम अली ईमान भी पैदा कर। खुदा का कलाम सुनने से हमारे अंदर खुदा का जो ईमान है वो पैदा होता है। ईमान कलाम से पैदा होता है और सुनना खुदा के, ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना खुदा के। सो वन ऑफ द प्रिंसिपल थिंग्स जो खुदा का कलाम हमारी जिंदगियों में लाता है, दैट इज विजडम। इट मेक्स अस वाइज, हमें दानिशमंद, फहीम, अकलमंद बना दे। कलाम की तीसरी आंखों को नूर बख्शती है, आपको सादा दिलों को अकलमंद। अगर हम देखें इंसान आठ बार और इवन जो नौवां चैप्टर है वो भी अहम निकाले इंसान की किताब, उसका आठवां बाद और चंद एक वर्सेस हम यहां पे देखेंगे कि हिकमत के बारे में क्या कहा है। पहली आयत,
जो मीनिंग
है वर्ड्स का वो ये है विजडम इज कॉलिंग यू, हिकमत पुकार रही है, हिकमत बुला रही है, हिकमत ये कह रही है कम एंड लर्न फ्रॉम मी, आओ और मुझसे सीखो। और ये हिकमत कहां पे है? इन द वर्ड ऑफ खुदा की कलाम है। और पीछे फेसबुक पे मैंने बाइबल स्टोर्स भी बताया, कई जगह भी लिखा होता है इंसान धक्के खाने से हिकमत सीखता है, तो मैं उसके नीचे हमेशा लिखता हूं नहीं, खुदा इंसान खुदा के कलाम से हिकमत सीखता। दिस इज व्हाट द बाइबल सेज, विजडम कम्स फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। धक्के खाने से बंदा कुछ भी नहीं सीखता, धक्के खाने से। तो विजडम कॉल, विजडम बुला रही है, विजडम पैगाम दे रही है, हिकमत ये कह रही है और मुझसे फहम हासिल कर, मुझसे सीख। छठी आयत,
सुनो क्योंकि मैं लतीफ बातें कहूंगी और मेरे लबों से रास्ते की बातें निकलेंगी।
सो हिकमत में क्या है? लतीफ बातें हैं और रास्ते की बातें। विजडम स्पीक्स राइटियसनेस एंड नोबल थिंग्स। दसवीं याद में आए,
चांदी तो नहीं बल्कि मेरी तरबियत को कबूल करो और कुंदन से बढ़कर इल्म को, क्योंकि हिकमत मरजान से अफजल है और सब मरबूब चीजों में बेनजीर।
सो वर्ड ऑफ गॉड सेज कि जितनी मरबूब चीजें हैं, दिल दिल दिलचस्प चीजें हैं, पसंदीदा चीजें हैं, उनमें हिकमत जो है वो बेनजीर है। यानी इफ यू आर अ मैन ऑफ विजडम, यू आर अ रियली मैन ऑफ गॉड। अगर खुदा हमारी जिंदगी में है, खुदा का कलाम हमारी जिंदगी में है, विजडम हमारी जिंदगी में है, अब बेनजीर। पीपल विल कम आफ्टर योर विजडम, वो आपसे हिकमत की बात जो है वो सुनना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे। और सुलेमान ही हमें कहता है वो चांदी से और कुंदन से भी बढ़ है। सोने और चांदी की बड़ी वैल्यू है और मरजान की बड़ी वैल्यू है और चीजों की बड़ी वैल्यू है दुनिया में सोलोमन से, लेकिन खुदा की निगाह में हिकमत की जो वैल्यू है वो सबसे बढ़कर है। और ये हिकमत कहां से मिलती है? खुदा के कलाम से। बस हर शख्स सुनने में, पंद्रहवीं आए,
मेरी बदौलत बादशाह सल्तनत करते और उमरा इंसाफ का फतवा देते
हैं। एंड किंग्स नीड दैट विजडम। So once again, wisdom speaks over here कि जो हुक्मरान हैं, जिन्होंने हुकूमतें करनी हैं, और काजियों को किसकी जरूरत है? हिकमत की। बारहवीं आए,
जो मुझसे मोहब्बत करती है मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ, और जो मुझे दिल से ढूंढते हैं वो मुझे पा रहे हैं।
बत्तीसवीं आए,
इसलिए ए बेटो मेरी सुनो, क्योंकि मुबारक है वो जो मेरी राह पर चलते हैं। तबीयत की बात सुनो और दना बनो और इसको रद्द ना करो। मुबारक है वो आदमी जो मेरी सुनता
है। And you don't reject the wisdom of God। और ये जो वर्सेस हैं इस चैप्टर के एंड में और जब नौवें चैप्टर में हम जाते हैं, these verses speak blessing comes when we move and when we live in the wisdom of God। और अभी जो मैं ये पीछे आयत पढ़ी, सामने आयत, हम उसे दोबारा पढ़ेंगे, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग।
जो मुझसे मोहब्बत करते हैं मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ, और जो मुझे दिल से ढूंढते हैं वो मुझे पा रहे हैं। दौलत और इज्जत मेरे साथ है, बल्कि दाहिनी दौलत और सदाकत भी।
दौलत और इज्जत मेरे यानी अ मैन ऑफ विजडम विल बिकम अ मैन ऑफ वेल्थ एंड अ मैन ऑफ रिप्यूट। दौलत और इज्जत मेरे साथ। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है, और जो मुझे दिल से ढूंढते हैं वो मुझे। विजडम डजंट हैपन्स बाय चांस, अचानक नहीं हिकमत मिल जाती है कि आप रात को सोए, आप एक बेवकूफ और अहमक शख्स थे और सुबह होते ही मैं तो फिलासफर बन गया। इट डजंट हैपन्स ओवरनाइट, इट डजंट हैपन्स बाय चांस कि आपको सड़क पे चलता फाटक पे गड़े था भी आज तक आज तक हिकमत ही नहीं। और आज से मैं बदल गया, मैं एक हकीम बन गया, मुझ में हिकमत और दनाई आ गई है। इट डजंट हैपन्स लाइक दैट। जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं मैं उनसे मोहब्बत रखती हूं, और जो मुझे दिल से द पीपल वांट टू गेट मी, जो मुझे चाहते हैं, जो मुझे ढूंढते हैं, जो मेरे पीछे आते हैं, जो खुदा के कलाम को खुदा की हिकमत को जानना चाहते हैं सीखना चाहते हैं वो पाते हैं। सो इफ यू वॉन्ट टू गेन विजडम तो आप सुनने में प्लीज, और ये बाय चांस नहीं है, आपको इसके लिए अपनी प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, आपको टाइम निकालना पड़ेगा। आई वॉन्ट टू बिकम अ वाइज मैन, मैं एक दानिश शख्स बनना चाहता हूं, और आपको इसके लिए फैसला करना पड़ेगा, आपको अपने आप को चैलेंज करना पड़ेगा। आई वॉन्ट टू बिकम अ वाइज मैन, और आप कैसे वाइज मैन बनेंगे? रीड द वर्ड ऑफ गॉड, हियर द वर्ड ऑफ गॉड, सुनने में तेज हो, खुदा का कलाम दिलचस्पी से सुने और खुदा के कलाम को सुने, कलाम की तशरीह को सुने, एंड इट विल मेक यू वाइज। कलाम की तशरीह आपको को नूर बख्शती है और वो सादा दिमाग को अकलमंद बना देती है, लेकिन कुछ काफ़िर कलाम की ऐसी तशरीह करते हैं जो चाहे सुनने वाले भी बेवकूफ बन जाते हैं, उनकी समझ में नहीं आता ये बात क्यों। तो कलाम की जो दुष्ट तफसीर है वो इंसान को अकलमंद बना देती है। सो ऑल विजडम कम्स, विजडम कम्स फ्रॉम गॉड, हैव द विजडम ऑफ गॉड, यह आपको कामयाब बनाएगी, बरकत देगी और दौलत और इज्जत और शोहरत को आपकी जिंदगी में लाएगी। और दूसरी बात, हाउ वी कैन गेट विजडम, सुनने में तेज हो, शेयर विद द पीपल ऑफ विजडम, ऐसे लोगों के पास बैठे जिनके पास खुदा का कलाम है, ऐसे लोगों के साथ बैठे जिनके पास विजडम है, सो दैट विजडम इज इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। और फिर जेम्स के लेटर में जेम्स ये बताता है, प्रे फॉर विजडम, हिकमत के लिए दुआ करो। सो हर शख्स सुनने में तेज, सो टेक दिस चैलेंज अपनी जिंदगी में, सामने चैलेंज लें कि आई नीड टू लर्न विजडम, आई नीड टू नो द वर्ड ऑफ गॉड। और अगर आप दुनियावी तौर पर भी इस बात को अप्लाई करें कि सुनने में तेज हो, तो दूसरे की बात को सुने, गौर से सुने, अगला बंदा क्या कह रहा है समझे, सुनने का मतलब क्या है समझ, व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग। कई लोग अपनी बात ही करते हैं और दूसरे की बात नहीं सुनते। लिसन व्हाट योर वाइफ इज सेइंग, लिसन व्हाट योर हस्बैंड इज सेइंग, एक दूसरे की बात को सुने, तवज्जो दें और कुछ देर खामोश रहना सीखे। क्या लिखा है अकलमंद के बारे में, अहमद भी जब खामोश रहता है तो वो तनाव में शुमार किया जाता है। कलाम की कसरत खता से खाली नहीं, व्हेन वी टॉक मोर वी मेक मोर मिस्टेक्स। तो हर शख्स सुनने में तेज, बोलने में धीमा और कहर करने में धीमा। सो व्हाट हैपेंस जब हम सुनने में तेज हैं, What happens then? इसका रिजल्ट क्या होगा? जब हम सुनने में तेज होंगे तो हम बोलने में, हाँ जी, बोलने में क्या होगा, फिर स्लो डाउन, हम कम बोलेंगे, बोलने में दीदा और कहर करने में हम लर्न क्या कर रहे हैं कि गुस्सा हमारे अंदर से कैसे जाए। What's the progression? What's the method? What's the way? जब हम सुनने में तेज होंगे और बोलने में स्लो डाउन होंगे तो अल्टीमेटली एंगर हमारी जिंदगी में से निकलना शुरू हो। दूसरी बात, टॉकलेस, गुफ्तगू कितनी करें कम करें। आज हम एक वाला पढ़े, इक्लीसियास्टस पांचवा बाब उसकी दूसरी है,
बोलने में जल्दबाजी ना कर और तेरा दिल जल्दबाजी से खुदा के हुजूर कुछ ना कहे, क्योंकि खुदा आसमान पर है और तू जमीन पर, इसलिए तेरी बातें मुख्तसर,
मुख्तसर बातें करें खुदा के सामने भी लोगों के सामने, टू दी पॉइंट बात करें, मुख्तसर बात करें, और थिंक मोर एंड टॉक लेस। इंसान 29 बार उसकी 20वीं आए,
जब तू बेकामल बोलने वाले को देखता है उसके मुकाबला में अहमद से ज्यादा उम्मीद है।
And the person who speaks a lot, who speaks in haste, उसके मुकाबले में अहमद की जो उम्मीद है वो ज्यादा है. जो बहुत बोलने वाला है और हेस्ट में बोल जाता है उसकी निस्बत उसकी उम्मीद ज्यादा है जो अहमक है. यानी जो तेज बोलने वाला है वो अहमक से भी बुरा है. दिस इज व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेड. सो जेम्स ने इसी बात को रिपीट किया, सुनने में तेज बोलने में धीरा स्लो. इंग्लिश में भी आपने याद रखना है quick to listen and slow to talk. वजह क्या है इसकी? जिंदगी और मौत जुबान के काबू में, इख्तियार में. समझें जब हम बहुत बोलते हैं वी कैन टॉक अमिस, हम ऐसी बातें अपने बारे में दूसरों के बारे में भी कह जाते हैं, ये कह सकते हैं जो हमारे लिए और दूसरों के लिए नुकसान है. लेकिन यहां पे जो एक मेन एरिया जिसमें मैं फोकस करना चाहता हूं ये है, पहली बात जो हम देख रहे हैं वो ये है कि बोलने में धीरा, और सेकेंडली अपने अपने गुफ्तगू में अल्फाज में सिलेक्टिव सिलेक्टिव, और कैसी जुबान इस्तेमाल करें. यूज काइंड वर्ड्स अपनी गुफ्तगू में. कैसे अल्फाज को लाए? यूज काइंड वर्ड्स. उर्दू में क्या कहेंगे? ऐसे गुफ्तगू या ऐसे अल्फाज हम अपनी गुफ्तगू में इस्तेमाल करें जिनमें नरमी का, नरम मजाजी का, मेहरबानी का, तहम्मुल का, पेशेंस का जो रवैया है वो नसर. ये क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है, अनकाइंड वर्ड्स किल योर रिलेशनशिप्स. व्हेनेवर यू स्पीक अनकाइंड वर्ड्स, जब आप किसी के साथ भी ऐसी गुफ्तगू करेंगे जिसमें आप अनकाइंड वर्ड्स यूज करेंगे, यू आर गोइंग टू किल दैट रिलेशनशिप. चाहे वो आपके अज़वाजी रिश्ते हैं, आपके दोस्त हैं और लोग हैं, you will kill that relationship. Unkind words kill your relationships. So when you talk, talk less and talk kind. जब भी आपने गुफ्तगू करनी है तो बड़े आप नाप तोल के सोच समझ के अच्छी तरह से कैसे अल्फाज इस्तेमाल करने हैं. हार्श वर्ड नहीं यूज करते हैं, काइंड वर्ड यूज करते हैं, और पॉजिटिव वर्ड यूज करने हैं. और जब आपने किसी को ये कहना है कि आपको बहुत शुक्रिया, तो आप और काइंड वर्ड यूज करें, आप जनाब का बहुत शुक्रिया. और अगर आप मजीद उर्दू सीखना चाहते हैं तो आपको बताने की जरूरत है. बट यूज काइंड लैंग्वेज, यूज काइंड वर्ड्स. आपको अपनी बीवी को यह कहने की सुबह जरूर चाह बना रहे तो बड़ी जल्दी में जाना. अब ये मेहरबानी से नाश्ता बना दी. यूज काइंड वर्ड्स. मैं आपको यकीन से ये बता सकता हूं कि जो बंदा आपका काम नहीं भी करना चाहता है, जब आप काइंड वर्ड यूज करते हैं उसके दिल पे असर होता है, बंदा बड़ा चाहिए. वो आपकी गुफ्तगू से मुतासर होकर वो आपके लिए काम करता है. यूज काइंड वर्ड्स. बेजा तारीफ बेशक हम ना करें, लेकिन हमारी गुफ्तगू में, हमारी लैंग्वेज में वो खूबसूरत अल्फाज हों जिसमें काइंडनेस जो है वो नजर. सो व्हेन यू आर एंग्री टॉक लेस. उस वक्त बहुत ही कम, सिर्फ हाँ या ना भी जवाब दें, क्योंकि कोई और जवाब देंगे वो और गड़बड़ हो सकती. So when you are angry, when you are disturbed, when you are in pain, when you are in hurt, or when you are in depression, talk less. थोड़ी बात करें, क्योंकि कई दफा ऐसी हालत में हम ऐसी बातें कह जाते हैं जो बाद में हमारे लिए रिमूव करना या मिटाना जो है वो इजी नहीं होता. Words hurt more than sticks and stones. अल्फाज लाठियों और पत्थरों से ज्यादा जख्मी करते हैं एंड द वूंड्स दे लीव दे लॉन्गर टाइम टू हील। जो जख्म जबान से लगते हैं उनको शिफा पाने में देर लगती है। अनकाइंड वर्ड्स ब्रेक द बोन्स। जो अनकाइंड अल्फाज है गुफ्तगू है दे नॉट ओनली ब्रेक द बोन्स बट दे ब्रेक द हार्ट। दूसरे बंदे का जो दिल है वो तो सो व्हाट वी आर लर्निंग लिसन मोर टॉक लेस। लिसन मोर टॉक लेस। खुदा का कलाम और दूसरे की बातें ज्यादा तवज्जो से सुने एंड टॉक लेस। अब इसका इस पैगाम में ये मतलब नहीं है कि आज के बाद आपके घरों में खामोशी हो जाए, मियां बीवी के दूसरे से बात न करें, बच्चे ये पाली साहब ने एक आठ गुफ्तगू करें, मुनासिब गुफ्तगू करें और आप काइंड अल्फाज यूज करें। तीसरी बात काम दाम बी स्लो टू एंगर, स्लो टू एंगर, स्लो टू एंगर। मेरे पीछे आप एक दफा सब रिपीट करें ताकि आपको याद हो। पहला पॉइंट क्या है? लिसन मोर। मैं सर देख लो, हाँ जी, लिसन मोर टॉक लेस। स्पेशली पैगंबर के लिए जुमला है टॉक लेस और तीसरा काम ना। नेक्स्ट टाइम आप किसी चर्च के बंदे को गुस्से में देखें आपने ये कहना है काम ना। भाई एक मिनट ठंडे हो जाओ, ठंडे हो जाओ। लिसन मोर टॉक लेस काम ना। तो तीसरी बात हम देख रहे हैं काम ना। So he, James is not talking about a passing moment of displeasure or anger, or अभी किसी वक्ती बात पे किसी चीज पे आपको एकदम गुस्सा आया और फिर वो जाता रहा या ठंडा हो गया। He is talking about something deep rooted, some kind of an emotion which is deeply rooted inside our lives, or he is saying control your anger. Control your anger. Calm down. Be slow to anger. जब ये कह रहा है कि कहर करने में धीमा हो, he is telling us you can control your anger. मिसाल के तौर पर मियां बीवी के आपस में लड़ाई हो रही है, तीसरी जंगे सीन चल रही है, बीच में फोन आ जाता है तो शौर जाता है, फोन सुनता है थोड़ी देर के लिए, बड़ी अच्छी तरह बात करता है, हाँ जी की हाल चाल है तुम्हारा, सब ठीक है, हाँ जी अभी भी ठीक है, बस जरा थोड़ी गुफ्तगू हो रही है और वो आराम से बातचीत जाके फोन नीचे आ जाता, फिर दोबारा लड़ाई शुरू हो जाती है और जहां से सिलसिला टूटा था फिर महीने शुरू हो जाता। इससे क्या मतलब है कि इन बिटवीन आपने अपने गुस्से को कंट्रोल कर, फोन आ गया और आपने उसकी वजह से अपने गुस्से को कंट्रोल किया। इसका मतलब है फोन के बगैर भी आप अपने गुस्से को कंट्रोल। सो व्हाट जेम्स इज सेइंग ओवर हियर, वी कैन कंट्रोल आवर एंगर, टेक योर एंगर अंडर योर कंट्रोल। और अब इन सारी चीजों का प्रोग्रेशन क्या है, रिजल्ट क्या है, तरतीब क्या है, अगर हम सुनने में तेज होंगे, बोलने में धीमे होंगे तो अल्टीमेटली गुस्सा जो है हमारी जिंदगी में से निकल। एंड इफ वी आर स्लो टू लिसन एंड फास्ट टू स्पीक तो हम गुस्सा जो है हमारी जिंदगी में वो ज्यादा। सो इफ यू सी एन एंग्री पर्सन जो हर बात में गुस्से में आ जाता है, गुस्से में रहता है, इसका मतलब यह है ये शख्स सुनता कम है और बोलता ज्यादा। बिकॉज बाइबल सेज इफ वी लिसन मोर टॉक लेस और ऑटोमेटिकली गुस्सा जो है हमारी जिंदगी में कम है। सो तीतुस के खत में और तिमोथियुस के खत, तिमोथियुस के तीसरे बाब में और तीतुस के पहले बाब, रूहानी शख्स के ताल्लुक से 25 खूबियां बयान की गई। पहला तिमोथियुस तीसरे बाब में और तीतुस के पहले खत में 25 गॉडली कैरेक्टरिस्टिक्स बयान किए गए हैं जो एक रूहानी शख्स में होते हैं। और अगर हम उस लिस्ट की कैटेगरीज बनाएं तो उस कैटेगरी जो कैटेगरी उसमें से बनती है, एक जो कैटेगरी है वो टेम्परामेंट के ताल्लुक से बनती है, गुस्से के ताल्लुक से एक जो कैटेगरी है वो बनती है। और हम उसमें ये देखते हैं कि 500 बातें, उन 25 बातों में से जो एक गॉडली जिंदगी में होनी चाहिए, 5 का ताल्लुक गुस्से के साथ, 5 का ताल्लुक किसके साथ है? गुस्से। यानी सबसे ज्यादा जो पॉइंट किसी कैटेगरी में आते हैं वो गुस्से के साथ, गुस्से के ताल्लुक से आते हैं। आए हम पढ़े कि 10 पहला बाब उसके साथ भी है। जल्दी जल्दी हम ये 5 पॉइंट पढ़ते हैं।
क्योंकि निगवान को खुदा का मुख्तार होने की वजह से बेअंजाम होना चाहिए, न खुददारी हो, न गुस्सा बैठ, न नशा में गुल मचाने वाला, न मार पीट करने वाला, और ना नाजायज नफा का लालच।
हां जी, ओवरबेयरिंग ना हो और क्विक टेम्पर्ड ना। दोबारा पढ़ देने साथ इसमें 3 बातें आ जाती हैं।
क्योंकि निगवान को खुदा का मुख्तार होने की वजह से बेअंजाम होना चाहिए, न खुददारी हो, न गुस्सा बैठ,
न खुददारी हो,
न नशा में गुल मचाने वाला, न मार पीट करने वाला।
और गुस्से का उदाहरण क्या, जरा मार पीट करना, ये वो पॉलिश से ये चीजें नहीं होंगी। अच्छा, दूसरा वाला पढ़े, पहला तो मोसिस, तीसरा बात तीसरी,
नशा में गुल मचाने वाला या मार पीट करने वाला ना हो, बल्कि हलीम हो, न तकरारी, न जर्द हो।
जब हम पढ़ेंगे मिसाल 16 बाब उसकी 32वीं आयत, ये व्हाट इज सोलोमन सेइंग ओवर इट, वो एक शख्स को जो अपने गुस्से पर काबिज हो जाता है, गालिब आ जाता है, कंट्रोल कर लेता है, उसके बारे में क्या कहते हैं?
जो कहने में धीमा है पहलवान से बेहतर है,
जो कह करने में, हाँ जी, क्या है? धीमा है। Whoever is slow to anger is better than the mighty. वो पहलवान से ज्यादा बेहतर है। हाँ जी, आगे।
और वो जो अपनी रूह पर जाबित है उससे जो शहर को ले लेता
है। और वो जो अपनी रूह पर जाबित, तो दिस इज व्हाट वी आर लर्निंग टुडे, कि कहर करने में धीमा, यानी अपनी रूह पर जाबित हो, जब्त रखता हो अपनी रूह पर। He is a mighty man. खुदा की निगाह में वो माइटी मैन। माइटी मैन यहां पर क्यों कहा गया है? बिकॉज द माइटी मैन आर विनर्स। जो माइटी लोग हैं वो फातिह लोग हैं। एंड सोलोमन इज सेइंग ओवर हियर, जो अपने रूप पे जब्त कर सकता है, दैट पर्सन इज अ विनर, वो कामयाब होगा अपनी जिंदगी में, खानदानी जिंदगी में, अजवाजी जिंदगी में, खिदमत में, अपने बिजनेस में, जो कुछ भी वो करेगा वो कामयाब। दिस मीन्स इफ वी लिव इन एंगर, वी आर लिविंग अ लाइफ डिसप्लीजिंग टू द लॉर्ड। हम एक ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं जो खुदा को पसंद। इफ वी आर एंग्री पर्सन, वी आर लूजर। हम नाकाम होते रहेंगे, हम बार बार अपनी जिंदगी में नाकाम होते रहेंगे। अगर हम बार बार हमारी तबीयत में ही हम नाराज होते रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, नाराज रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, हम बार बार नाकाम होते रहेंगे। लेकिन अगर हम अपनी रूह पर जाबित हैं या जब्त रखते हैं, वी आर विनर्स, हम कामयाब होंगे, हम बिल्ड करेंगे और हम खुदा के लिए बहुत कुछ कर सकते। एंड इफ यू वॉन्ट टू बी अ विनर, अगर आप फातेह बनना चाहते हैं, यू नीड टू गेट एंगर अंडर कंट्रोल। और कई चीजें हैं जो फाते में, जिनको मैं कैटेगराइज, मिसाल के तौर पर, इफ यू वांट टू बी अ सोल विनर, अगर आप उन्हें बचाने वाले बनना चाहते हैं, अगर आप शहरों को बचाने वाले बनना चाहते हैं, अगर आप गांवों को बचाने वाले बनना चाहते हैं, अगर आप जिंदगियों को बचाने वाले बनना चाहते हैं, यू मस्ट हैव योर एंगर अंडर कंट्रोल। बिकॉज द मैन हु कंट्रोल्स हिज एंगर इज अ विनर, इज अ माइटी मैन। और इसी तरह से अगर आप जिंदगी के दूसरे एरियाज में कामयाब होना चाहते हैं, यू मस्ट लर्न टू कंट्रोल योर एंगर। खुदा यीशु मसीह इसलिए नहीं आए कि वो हमें बेहतर लोग बनाए, हमें अच्छे लोग बनाए, हम पहले ऐसे थे अब हम ऐसे हो जाएं, हमें बेहतर लोग बना दे, हमें अच्छे लोग बना दे। खुदा यीशु मसीह इसलिए नहीं आए बल्कि वो इसलिए आए थे ताकि हमें नए लोग बना और जो कि मसीह में है वो नया जाके नहीं देखो वो सब आमीन। तो आज का पैगाम क्या था? लिसन मोर टॉक लेस काम कम। लेकिन बात यह है कि ये आज का पैगाम नहीं, ये उस पैगाम की तरफ हम जा रहे हैं जो आज का पैगाम जिसको मैं सिर्फ एक दो बातों में आपके सामने वाजे आए हम पढ़े 104:32। ये है हमारा आज का पैगाम 104:32 आयत। आपने साल के आगाज ही में इस आयत को याद कर लेना है ताकि सारा साल और सारी जिंदगी हम इस पर अमल करें।
और एक दूसरे पर मेहरबान नरम दिल हो और जिस तरह खुदा ने मसीह ने तुम्हारे कसूर माफ किए हैं तुम भी एक दूसरे के कसूर माफ करो।
हाँ जी, ये जो जेम्स की टीचिंग है अल्टीमेटली इसकी जो कल्मिनेशन है जो जो निचोड़ है मजमुआ है 104:32 आयत में है। अरे बहुत से आयत को पढ़े, हाँ जी दोबारा पढ़े आहिस्ता आहिस्ता। बी काइंड टू वन अनदर
और एक दूसरे पर मेहरबान।
हाँ जी, क्या बात की जा रही है? एक दूसरे के साथ एक दूसरे पर बी काइंड टू वन, एक दूसरे के साथ क्या करो? मेहरबान। आगे
और नरम दिल हो।
नंबर दो, नरम दिल। कैसी जिंदगी हो? नरम दिल। आगे
और जिस तरह खुदा ने मसीह ने तुम्हारे कसूर माफ किए हैं तुम भी एक दूसरे के कसूर माफ करो।
तीसरी बार फॉरगिव ईच अदर, forgive each other. So if we are fast to listen, slow to talk, and slow in anger, this means ये तीन बातें हमारी जिंदगी में होंगी। हम एक दूसरे के साथ नंबर दो नरम दे और नंबर थ्री एक दूसरे को forgive each other. This is today's message, forgive each other. एक दूसरे से नाराज न रहे, एक दूसरे को माफ। आपके अजीज हैं, रिश्तेदार हैं, नेबर्स हैं, किसी ने प्लान किया आपके साथ, ये किया आपके साथ, वो किया आपके साथ, फॉरगिव। जैसे मसीह ने तुम्हें माफ किया तुम भी एक दूसरे को। मैसेज क्या है? ग्रेस टू अस, ग्रेस टू अदर्स। आप पे फजल हुआ है, आप दूसरों पे फजल। ग्रेस अपॉन यू, ग्रेस अपॉन अदर्स। खुदा ने आप पे फजल किया है, आप दूसरों पर उस ग्रेस को एक्सटेंड करें। खुदा के फजल की बारिश आप पर हुई है और आपकी जिंदगी से दूसरों पर खुदा के फजल की बारिश। बी काइंड टू वन अनदर, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ, सब मेरे पीछे, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ मेहरबान, नरम मिजाज, नरम मिजाज, नरम मिजाज, फॉरगिविंग ईच अदर, एक दूसरे को माफ करें। आई एम, एक दूसरे को माफ करें। इस नए साल में नई बातों का आगाज करें, नई जिंदगी का आगाज करें, नए करैक्टर में जिंदगी बसर करें। बी काइंड टू वन अनदर, टेंडर हार्टेड एंड फॉरगिविंग ईच अदर। Showing grace to others, इस सारी बातों का मजमुआ क्या है? एक जुमले में कैसे बयान करेंगे? Showing grace to और what is the conclusion? जो कुछ मसीह ने आपके लिए किया है आप दूसरों के लिए, जो कुछ यीशु ने आपके लिए किया है दूसरों, यीशु ने आपसे प्यार किया है आप दूसरों से, आप दूसरों से, यीशु ने आपको माफ किया आप दूसरों को, यीशु ने आपको कबूल किया है आप दूसरों को, यीशु ने आपकी मदद की है आप दूसरों की, यीशु ने आपसे प्यार किया है आपने दूसरों को, यीशु मसीह ने आपकी कमजोरियों को माफ कर दिया है आपने दूसरों की कमजोरियों को माफ किया। यीशु मसीह ने आपकी गलतियों को भुला दिया है, हमने दूसरों की गलतियों को भुला दिया। यीशु मसीह ने आपको उठा खड़ा किया है, हमने दूसरों को उठा खड़ा किया। यीशु मसीह ने हमारी मदद की है, हमने दूसरों की। डू विद अदर्स व्हाट जीसस हैज डन फॉर यू। जो यीशु ने आपके लिए किया है आप दूसरों के लिए करें, ये है मसीही जिंदगी। जो मेहरबानी उसने आप पे की है वो आप मेहरबानी दूसरों पे करें, जो फजल उसने आप पे किया है आप वो फजल दूसरों पे। जैसे उसने आपके गलतियों को या गुनाहों को या मिस्टेक्स को माफ किया है, यू फॉरगिव अदर्स। वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द लव ऑफ गॉड अनलेस वी लुक एट द क्रॉस। जब तक हम सलीब को नहीं देख सकते हैं हम खुदा की मोहब्बत से वाकिफ नहीं हो सकते, और हम सलीब को उस वक्त तक नहीं समझ सकते हैं जब तक हम खुदा की मोहब्बत को नहीं जान सकते। हम खुदा की मोहब्बत को उस वक्त तक नहीं जान सकते हैं जब तक हम सलीब के पास नहीं जाते, और जब हम सलीब को समझते हैं फिर हम खुदा की मोहब्बत को समझते हैं। मैन सिन बिकेम गॉड सैक्रिफाइस। इंसान का गुनाह खुदा की कुर्बानी। सो डू फॉर अदर्स व्हाट जीसस हैज डन फॉर यू, पहली बात। दूसरी बात, इन नेगेटिव सर्कमस्टांसेस जब आप मनफी हालात में से गुजरते हैं, यीशु से क्या मांगे? मदद। यहोवा मैं पुकारता हूं मेरे मालिक। जब आप फॉर एग्जाम्पल जब आपकी मुखालफत की जाती है या तो आपके साथ बुरी तरह से पेश आता है, खुदा से क्या मांगे? खुदा मुझे अपनी मेहरबानी का फजल अता फरमा ताकि मैं इस शख्स से मेहरबानी से पेश। जब आपसे नफरत की जाती है आप खुदावन की मोहब्बत के किरदार को मांगे अपनी। जब आपसे नफरत की जाती है आप मसीह के मोहब्बत के किरदार को अपने लिए मांगे। जब आपको रद्द किया जाता है आप मसीह से उसकी बर्दाश्त को मांगे। जब आपकी आपको मिसअंडरस्टैंड किया जाता है आप मसीह से उसकी पेशेंस को मांगे। When Christ dwells in our hearts, then we are full of grace. जब मसीह हमारी जिंदगियों में बसता है फिर हम मसीह से भर जाते हैं। Then we are full of the beauty of Christ. Then we get full of the grace of Christ. Then we are full of the mercy of Christ. Then we are full of the holiness of Christ. Then we are full of the kindness of Christ. देखिए इस बात को गौर से सुने। When we are living in Christ, and when Christ is living in us, then we live like Christ. Then we live like Christ. When we are living in Christ, जब हम मसीह में जिंदगी गुजारते हैं और मसीह हम में जिंदगी गुजारता है फिर हम मसीह की मानव जिंदगी गुजारते। You get the point? Then we live like Christ. और आखिर में मैं फिर उसी बात को रिपीट करूंगा, जो कुछ खुदा ने हमारे साथ किया है हम दूसरों के साथ। यह है नया साल हमारे लिए, यह है एक नई डायरेक्शन हमारे लिए कि यह साल हमने कैसे गुजारना है, और एक नई राह पे हमने कैसे चलना है, और एक नई डेवलपमेंट हमने अपनी जिंदगी में क्या लानी है, कैसे लानी है, एक नई तब्दीली हमने अपनी जिंदगी में क्या लानी है, जो कुछ मसीह ने हमारे साथ किया हम दूसरों के। आमीन। खुदा खुदा सब को बरकत।
यकीनन इस पुर असर पैगाम के वसीले से आपको बरकत मिली है। अगर आप अब तक किसी तरह के हालात, मुश्किलात या गुनाह के बाइस परेशान हैं, तो आज ही खुदावंद यीशु मसीह के पास आएं। खुदावंद यीशु ने फरमाया है, ए बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत से पाओ। अगर आज आप अपने गुनाहों का इकरार करने और उनको तर्क करने के लिए तैयार हैं, तो खुदावंद यीशु आज ही आपकी जिंदगी में दाखिल होकर नई जिंदगी का तजुर्बा बख्शेंगे और आप खुदा के बेटे और बेटियां बन जाएंगे। वो आपको नजात, जिस्मानी शिफा, रिहाई और बरकत देंगे। नजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है और ईमान लाना दिल से होता है। आप मेरी रहनुमाई में इस दुआ को दोहराएं, खुदावंद यीशु, मैं पूरे दिल से ईमान लाता हूं कि तू मेरा शख्सी नजात दहिंदा है। तूने सलीब पर मेरे गुनाह अपने ऊपर उठा लिए। इतने बरसों तक मैंने गुनाह, गंदगी, गुलामी और नशे में जिंदगी बसर की। आज तू मुझे अपने पाक खून के वसीले से धो और पाक और साफ कर। मेरी जिंदगी में आ और मेरी जिंदगी का मालिक और खुदावन बन। आज से मैं उन तमाम कामों को तर्क करता हूं जो तुझे पसंद नहीं। मुझे अपनी बादशाहत में कबूल फरमा। मैं इस नई जिंदगी के तजुर्बे के लिए तेरा शुक्र करता हूं। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आमीन।